रात बीत चुकी थी, अगला दिन शुरू हो चुका था। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और तीनों ही थोड़े अलर्ट हो गए। बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। इनाया हर आहट को गौर से सुन रही थी। अचानक गोडाउन का लोहे का पुराना गेट अजीब सी आवाज़ के साथ खुला। तेज़ रोशनी अंदर आई और इनाया की आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और नज़र सबसे पहले सामने गई, जहां वो गुंडा अपने 4-5 आदमियों के साथ खड़ा था। इनाया का चेहरा अब भी भावहीन था। तुम्हारे बॉस ने हमें यहां कैद करके रखने कहा है, क्या उसके साथ ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि हमें भूखे प्यासे मार दिया जाए? इनाया ने तीखी निगाहों से घूरा। उस आदमी की बौहें ऊपर को तन गई। कहना क्या चाहती है तो साफ साफ बोल। कल दोपहर से हमने कुछ नहीं खाया है, पानी की एक बूंद भी हमारे गले से नीचे नहीं उतरी है। अगर हमें ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारने के ऑर्डर्स मिले हैं तो बता दो, हम मेंटली खुद को इस टॉर्चर के लिए तैयार कर लेंगे। लेकिन फिर तुम्हारा बॉस जब दोबारा अपनी जीत की खुशी मेरे साथ बांटने वापस यहाँ आएगा तो उसकी वो खुशी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि तब तक तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी कि वो मेरी हार और अपनी जीत का जश्न मना सके। इनाया तिरछा मुस्कुराई। उसका अंदाज और तेवर देखकर वो गुंडा भी हैरान था। न तो उसके चेहरे पर घबराहट थी और न ही आंखों में डर, वो बिल्कुल रिलैक्स थी। तुझे डर नहीं लग रहा? हम तेरे साथ यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। डर किससे? तुमसे? इनाया हंसी, जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। उस गुंडे की बौहें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। इनाया हंसते हंसते रुकी और होठों पर दर्द भरी मुस्कान बिखर गई। डर उसे लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, फिर कैसा और किसका डर? अब तो मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट खुशी होगी मुझे। और अगर तुमने मुझे इस जिंदगी के बोझ से छुटकारा दे दिया तो दुआएं दूंगी तुहे। वो गुंडा शॉक्ड सा फटी आंखों से उसे देखता ही रह गया। जैसा उसे उम्मीद थी, इनाया उससे बिल्कुल ही उल्टा बिहेव कर रही थी। इतनी शांत थी कि वो खुद कंफ्यूज हो गया था। लगता है तुझे गहरा सदमा लगा है, तभी ऐसी बातें कर रही है। समझ गई होगी कि अब यहां से निकलना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मरना चाहती है। लेकिन जब तक बॉस के ऑर्डर्स नहीं आते, तुझे मरने की भी इजाजत नहीं है। उन्होंने तुझे और तेरे इन दो साथियों को जिंदा रखने कहा है, तब तक जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, इसलिए तो चाहे भी तो उससे पहले मर नहीं सकती। इनाया के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। उस आदमी ने अपने साथी को आंखों से कुछ इशारा किया तो उसने हाथ में पकड़ी पॉलीथीन इनाया के सामने पटक दी। खाना है इसमें, बिना कोई नखरे किए चुपचाप खा ले। मुझे पहले वॉशरूम जाना है। वो गुंडा कुछ देर इनाया को घूरता रहा, फिर खींचते हुए बोला, लेकर जा रहे इसे? लेकिन नजर रखियो, बहुत चालाक लड़की है। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया और इनाया को पकड़कर खड़ा किया। हाथ पैर तो खोलो, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं? इनाया ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चलना नामुमकिन ही था। अगर उस आदमी ने उसे पकड़ा नहीं होता तो वो गिर ही गई होती। अगर जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनाया के हाथ पैर खोल दिए गए। उस गुंडे ने इनाया को धमकी दी, फिर दो आदमियों के साथ भेज दिया। उसी गोडाउन में पीछे के तरफ कोने में एक बाथरूम बना था जो जर्जर हालत में था। काफी गंदा था लेकिन चल रहा था। इनाया अंदर चली गई, दोनों आदमी बाहर खड़े उसकी निगरानी कर रहे थे। इनाया ने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो छोटा सा बाथरूम था जो पूरी तरह बंद था। एक गेट था और ऊपर एक छोटी सी खिड़की जिस तक पहुंचना मुश्किल था और वहां से बाहर निकलना नामुमकिन। इनाया मायूस हो गई। कुछ देर बाद बाहर निकली और दोनों आदमियों के साथ वापस उस तरफ जाने लगी जहां मानव और अनीता जी थे। आते जाते इनाया ने दोनों की नजरों से बचते हुए उस पूरे जगह को अपनी आंखों से स्कैन कर लिया था। उस जगह को देखकर ही पता चल रहा था कि जगह काफी वक्त से बंद है और सालों से यहां कोई नहीं आया है। इतनी धूल मिट्टी और गंदगी थी, कुछ चूहे भी देखे थे उसने। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि उसे कहीं भी यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा था। इनाया वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। उस पन्नी को खोलकर देखा, अंदर बड़ा पाव था, तीन प्लास्टिक की प्लेटें भी थीं। इनके भी हाथ पैर खोलो, तभी तो खाना खाएंगे, इनाया ने मानव और अनीता जी को देखकर कहा। उस गुंडे ने अपने आदमी को इशारा किया और उसने दोनों के हाथ पैर खोल दिए। काकी आप ठीक है? मनु तू ठीक है ना? इनाया ने परेशान निगाहों से दोनों को देखा। वो फिक्रमंद थी, जबकि मानव और अनीता जी जितने परेशान थे उतने ही हैरान भी थे। इनाया इतनी शांत थी, यही बात उनकी परेशानी की वजह बन चुकी थी। मानव और अनीता जी ने परेशान निगाहों से एक दूसरे को देखा, फिर निगाहें इनाया की तरफ घुमाई और एक साथ सवाल किया, ऐना तू ठीक है? इनाया बेटा तुम ठीक हो? इनाया दोनों का प्यार और परवाह देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूं, आप दोनों मेरी फिक्र मत करो, हाथ धो और खाना खा लो। कल से आप दोनों ने भी कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी और मनु को तो दवाई भी लेनी है। दोनों के मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन यहाँ उनके अलावा और भी लोग थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर हिलाया, हाथ धोकर आए। तब तक इनाया तीनों प्लेट में खाना निकाल चुकी थी, वो गुंडे उनके आसपास ही खड़े थे। तीनों ने खाना खाया, फिर इनाया ने मानव को उसकी दवाई दी। असल में सारा सामान उसी के पास था, एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग, जिसमें वो चीजें थी जो उन्होंने हॉस्पिटल में यूज की थी, वो भी नर्स से मंगवाकर। जब इनाया को गाड़ी में खींचा गया तब भी उसने सामान नहीं छोड़ा और वो भी उसके साथ यहाँ तक आ गया। कहीं नहीं भागेंगे हम, अब भागने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से भागकर जाएंगे भी कहाँ, तुम हमारे हाथ पैर खुले छोड़ सकते हो। वो गुंडे वापस उनके हाथ पैर बांधने लगे थे जब इनाया ने ये कहा, जिसने उस गुंडे को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसके हाथ पैर भी जख्मी है, छोड़ देता हूँ खुला। उस गुंडे ने इनाया के हाथ पैर को देखा जहाँ खून सूख चुका था, फिर अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और सब बाहर निकल गए। एक बार फिर गेट बाहर से बंद कर दिया गया। इनाया तुरंत बिना आहट किए चलते हुए गेट के पास पहुंच गई और कान लगाकर बाहर से आती आवाजें सुनने लगी। तुम तीनों यहीं रहोगे, तीन टाइम इनको खाना मिलना चाहिए, तुम यहीं बाहर रहना, थोड़ी थोड़ी देर में अंदर जाकर चेक करते रहना, कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधे मुझे फोन करना, मैं शाम को आऊंगा देखने, और खास ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर ये काम ठीक से पूरा हो गया तो हमें मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद हमें ये छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे, समझे? यस बॉस, हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाहर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा पसर गया। गुंडे ने सिगरेट का कश किया और बाकी लोगों को वार्निंग भरी नजरों से घूरा। उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी भारी और ठंडी आवाज वहां गूंज गई। जब तक मैं ना कहूं कोई उसे छुएगा भी नहीं। वहां खड़े बाकी गुंडे चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। एक बार ये काम पूरा हो जाए उसके बाद वो बुढ़िया और वो लड़का भी ठिकाने लगा दिए जाएंगे, उसने धुएं का गुबार हवा में छोड़ते हुए कहा, और फिर वो लड़की हमारी होगी। उसकी बात सुनते ही भीड़ में खड़े एक आदमी के होठों पर कंदी मुस्कान फैल गई। भाई, उसने धीमी लेकिन लालची आवाज में कहा, जब वो हमारी होगी तो सबसे पहले नंबर मेरा होगा। उसकी बात सुनते ही उसके आसपास खड़े गुंडे हंसने लगे। तभी दूसरा आदमी भी आगे बढ़ा, उसकी आंखों में लस्ट भरा था और होठों पर भद्दी सी मुस्कान थी। अरे अकेले ही क्यों, हम भी तो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए तो नंबर लगेगा नंबर और सबको बराबर मौका मिलेगा। तीसरे के होठों पर घिनौनी मुस्कुराहट थी और आंखों के आगे इनाया का हसीन दिलकश वजूद छा गया था। उनकी बातें सुनकर उनके बॉस का चेहरा अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखों में ऐसी ठंडक उतर आई कि वहां का माहौल ही बदल गया। चुप,
उसकी गरजती आवाज से सब एक पल में खामोश हो गए और घबराई निगाहों से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। गन वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबको पैनी निगाहों से घूरते हुए बोला, वो लड़की सबसे पहले मेरी होगी, उसके बाद किसी दूसरे का नंबर आएगा। उससे पहले अगर किसी ने भी उसके साथ कुछ की करने की कोशिश की, उसकी आवाज अब खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। वहां खड़े सब लोग सहम गए। वो आखिरी बार सबको घूरते हुए बोला, क्योंकि गद्दारों के लिए मेरे गिरोह में कोई जगह नहीं है। वहां फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि बोलना तो दूर, नजर उठाकर उसे देख भी सके। इसके कुछ देर बाद बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। इनाया का हाथ उसके सीने पर चला गया, उसकी धड़कनें थम सी गई थीं, घबराहट के मारे चेहरा पसीने से भीग गया था। उनकी बातों से उनके घटिया इरादों का साफ पता चल रहा था, जिसने इनाया के दिल को दहला दिया था। टू बी कंटिन्यूड।